I'm Tomorrow, Thank ಭಾರ ಭೂಮಿ ಸಜ್ಜನ ವೈಷ್ಣವಾರ್ವಭೌಮತಿ ಜಗನ್ನಾಥರತೆ ನಮಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಾಜೋಗಿನ್ನರೀಶ್ವರಿ ನಂದಜೋತಸುತಂ ದೇವಿ ತತೇ ಕೂತೆ ನಮಃ. ಅವರ ಆಚೆ ಪರಿಕ್ರಮಾ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುರು ಗೌರಾಂಗೇರಿ ಅನುಗ್ರಹ ತಾದೇ ಅಹೇಸ್ತುತಿ ಕೃಪಾ আমরা পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি এই হল রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত সৃষ্টি জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের ভজন গুটি এবং সমাধিটি স্থল। এই যে পাশে জলের উপরেই আপনারা অনেকেই দর্শন করেছেন, অতএব ওই স্থান হল শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি স্থল। অতঃপর আমরা রাস্তায় আসতে আসতে প্রৌঢ় মায়া তলা শ্রী প্রণামা দেবী প্রৌঢ় মায়া দেবী যোগ মায়া তাহার দর্শন করে আমরা এই স্থানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সকলেই একটু মন্ত্র বলুন দেখি, আমার সঙ্গে সঙ্গে বলবেন কাত্যায়নী
কাত্যায়নী
মহামায়ে
মহামায়ে
মহাযোগী
মহাযোগী
নদীশ্বরী
নদীশ্বরী
নন্দ গোপ
নন্দ গোপ
সুতম দেবী
সুতম দেবী
পতিমে
পতিমে
গুরুতে নমঃ
নমঃ।
আমরা শ্রী কাত্যায়নী দেবী শ্রী প্রৌঢ়া মায়া জগন্নাথ দেবীর দর্শন করে আছি, সেইখানে বৃদ্ধ শ্রী এবং কাত্যায়নী দেবী উভয়ে অবস্থান করছেন। আপনারা জানেন বৃন্দাবনে বেজেছে যখন যোগমায়া জন্মগ্রহণ করেন তাহার পূর্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলক ধামেতেই দেবীকে আদেশ করেছিলেন গোপ্য দেবী ব্রহ্ম ভদ্রে হে কল্যাণী হে দেবী তুমি দেবীতে যাও, সেইখানে গিয়ে যশোদা গর্ব সম্ভূতা ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি তুমি যশোদার গর্ব থেকেই জন্মগ্রহণ করবে। আবার সেই স্থানে বলা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন কি তুমি আমার অনুজা ছোট বোন হয়ে জন্মগ্রহণ করবে আর আমার লীলার সহায়িকা হবে, অতএব তুমি আমার লীলার সহায়িকা রবি। প্রথমে তুমি দেবতীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করবে, তারপরে যখন আমার জন্ম হয়ে আমার সেই জন্ম রহস্য যেন অত্যন্ত গোপন থাকে কেহই যাতে বুঝতে না পারে সেই কার্যটি তোমাকে করতে হয়। মা যশোদাকেও এমন ভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে যাতে তিনি আমার জন্ম রহস্যটুকু যেন বুঝতে না পারেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগ মায়াকে আদেশ দিলেন, তারপরে দেবতীর অষ্টম গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসলেন, এবং যশোদার গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিলেন। কিন্তু এখন উভয় জন্ম হলো, এই রহস্য কিন্তু কাউকে জানতে দেওয়া হল না। আর কৃষ্ণের পরবর্তী এখন ছোট বোন হয়ে জন সন্তান রূপে ছোট বোন হয়ে যোগমায়া দেবীও জন্ম নিলেন। এখন সকলেই বলেন যেহেতু জন্ম না দেয়, যেহেতু জন্ম না দেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতি নন্দন এইভাবে জন্ম নিয়েছেন, মথুরায় তাহার জন্ম হয়েছে কথাতে বলা হয়। কিন্তু এতে প্রবাদ মাত্র, কেন বাস্তবিক রূপে ব্রজবাসীগণ তারা সকলেই জানতেন শুনেছেন যে কৃষ্ণ নাকি দেবতির পুত্র। যদি দেবতির পুত্র হতো ব্রজবাসীগণের মনের মধ্যে অবশ্যই সংশয় থাকত। যেহেতু মায়ের সন্তান হয়, এখন কোন সন্তান পিতার মতো মুখের কাটিনকে নিয়ে জন্ম নেয়, আবার কোন কোন সন্তান মায়েদের মতো ফেরেশতা নিয়ে আসে মুখের চেহারা নিয়ে রূপ রং নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে ছেলেগুলি মায়েদের মুখের বর্ণ এবং তাহার স্বরূপকে নিয়ে জন্ম নেয় তাহাদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলা হয়। তো এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বয়ং ভগবান হতে পারেন, কিন্তু যখন ব্রজে জন্ম নিলেন মানসার গর্ভের থেকে জন্ম হয়েছে কি না হয়েছে ব্রজবাসী সেইটি প্রবাহ করলেন যে দেবতির পুত্র কি করে হবে। কেন যশোদার যশোদা মায়ের ফেস কাটিং নিয়ে কৃষ্ণের জন্ম, এখন ঠিক মায়ের মুখের মতই কৃষ্ণের মুক্তি, অত সেখানে কোন রকমের সন্দেহ করবার আর আবশ্যকতাই থাকে না। আবার অপর দিক দিয়ে সুদ্রবস্থানে বললেন কি জাত লাদা মহামনা নন্দস্তু আত্মদে উৎপন্ন জাত লাদা মহামনা নন্দ মহারাজ কৃষ্ণ জন্ম হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ব্রাহ্মণজনকে আবাহন করলেন, তাহাদের দ্বারা পূজা অর্চন করাইলেন, আর দান দক্ষিণা ঘুরি ঘুরি দান দক্ষিণা হল, পূজা পাঠ হল, তারপরে নারী খেতন হল। এখন যদি গর্ভের থেকে জন্ম না হলো তাহলে নারী খেতন কোথা থেকে হয়ে গেল। আবার যশোদানন্দন বলেই তিনি যে সর্বোচ্চ পরিচিত হলেন আর এইভাবে প্রকাশিত হলেন। যোগমায়া দেবী তিনি কি করলেন, তাহার ছোট বোন হয়ে আসলেন কংসের সামনে। দেখা গেল যখন বসুদেব মহারাজ তাকে কংসের কারাগারের মধ্যে নিয়ে গেলেন আর দেবতির কোলতে দিয়েছেন, এখন সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদতে লাগলেন। তাহার কান্না শুনে পারদরের ঘুম ভাঙল যে আমার জন্ম হয়ে গেছে, এবারে তুমি কংসকে খবর দাও। তো তারা এখন ছুটে গেল মহারাজ কংসকে খবর দিতে। আর সেই সময়ে এখন কংস ছুটে এসে বলে কি তোমার তোমার অষ্টমগর্ভের সন্তান এখনই দাও। এই বলে এখন জোর জবরদস্তি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। দেবকী বললে কি দাদা, এইবারে তো কোন বালক হয় নাই, একটি মাত্র কন্যা হয়েছি, তুমি তো আমার সমস্ত ছেলেগুলিকে মেরে দিয়েছো, আমার এই কন্যাটিকে তুমি তার ভিক্ষা দাও, কিছুতেই তুমি একে মারবে না। বহু অনুময় বিনয় করার সত্ত্বেও কংসকে আর শোনার পাত্র কিছুতেই শুনলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই এখন হাত দিয়ে ছেলে দাঁড় করে নিয়ে কারাগারের বাইরে গেলেন। গিয়ে যেমনি শিরাপৃষ্ঠে আঠার মারতে যাচ্ছেন এমন সময় হাত থেকে ছিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গিয়ে দেবী দুর্গা অষ্টভুজা হয়ে সিংহ বাহিনী সমস্ত দিব্য অস্ত্র হাততে ধারণ করে অষ্টভুজা দুর্গা হয়ে আকাশ মার্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যাবার সময় কংসকে এমন একটা লাঠি মেরে গেলেন যে লাঠির প্রহারেই কংসের মাথা ঘুরিয়ে গেল। বজ্র প্রহারে এখন কংসের মাথা ঘুরিয়ে গেল, চৌবন্ধকার হয়ে গেল। তখন মাথা লেট করে বসে বললো, বসে এখন দেখছি কি এত জোরে মারলো, কি কেবার এই প্রহার করলো আমাকে। উপর দিকে তাকিয়ে দেখলো কি আরে আমার আরাধ্য দেবী দুর্গা, সেই দুর্গা দেবীকে দেখেই আবার। তখন দুর্গা দেবী বললেন, রে বুড়ো কংস, তুই কি আমাকে মারবি, তোমাকে মারিয়ে যেই অন্যত্র বাড়ি ছেড়ে গোটাই পৃথাই সেই জলদীন হৃদয়কে এবং যাদবগণের প্রতি হিংসা করছে। এইরকম হিংসা জন্য কিন্তু রেহাই পাবে না, তুমি প্রাণতেই সমাপ্ত হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ বিধ্বংস হয়ে যাবে, কোন ক্ষমা হবে না। এই বলেই দেবী দুর্গা অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সেই জন্য বললেন কি দেবী দুর্গা দুঃস্বরূপে হয়ে গেলেন, এক স্বরূপে তিনি কাত্যায়নী যোগমা রূপে ব্রজগতীগণ ব্রজকুমারীরা ছোট ছোট বালিকাগণ তাহারা দেবীতে কাত্যায়নী দেবীর পূজা করেন, আর ওই মন্ত্রী দ্বারা তাহারা প্রার্থনা করলেন কি কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিনী অধিষ্ঠিত, হে কাত্যায়নী, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনী, তুমি তো সকলকে অভিহিত করে থাকো, অতএব কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ করাইবার জন্য তুমি আমাদের পিতা মাতা গুরুজন অভিভাবক তাহাদিগকে মোহিত করে দাও, যাতে কৃষ্ণ মিলনে আমাদের কোন বাধা না ঘটে। হে মহাযোগিনী, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করে থাকো, অতএব আমি আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি যে তুমি আমাদেরকে কৃষ্ণের সঙ্গে সংযোগ করাও। আমরা যে কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠী, ব্রজগোপীগণের প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি, তাদের প্রেমের মধ্যে যে নিষ্কাম প্রেম, কোন সময়ের অপেক্ষা নাই আর কোন বয়সের অপেক্ষা নাই, ছোট ছোট ব্রজবালিকা ব্রজকুমারীরা তারা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত লালাই। বড়দের কাছে শুনেছে একটা শব্দ, কিন্তু তার মানেও বুঝে না যে প্রতি মানে কি হয় আর স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারটা কি, তাদের কোনো কিছুই জানা নাই। ছোট ছোট বালক বালিকাগা তারা শুনে রেখে যে প্রতি হয় পুরুষকে প্রতি বলে, তাই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেন আমাদের প্রতি হয়, কেমন ধরনের প্রতি, তার সঙ্গে আমরা যাতে খেলাধুলা করতে পারি, তার সঙ্গে আনন্দ বিহার করতে পারি, নাচ গান করতে পারি, সেই কারণে হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনী, তুমি এই অনুগ্রহ করো যাতে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলাধুলা করতে পারি। দেবী পতিম কুরুতে নমঃ, তাকে প্রাণপ্রতাম রূপে যেন সেবা করতে পারি। তো এই জগতে যেমন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, যুবক যুবতীর মধ্যে কিশোর কিশোরী হলে, তারপরে যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হলে, তখন পরস্পরের প্রতি অনুরাগ এবং প্রেম ভালোবাসা জাগে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের ভক্তজনের প্রেম প্রতি ভালোবাসার মধ্যে না কোন বয়সের, না কোন দেহের, না কোন সময়ের কোন কিছুর অপেক্ষা নাই, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময়ে তাহাদের কৃষ্ণ অনুরাগ যে জেগে ওঠে, আর সেইভাবে তাহারা যে উৎকণ্ঠিত হয়। এখন যোগমায়া দেবী দুই স্বরূপে, এক স্বরূপে তিনি মহামায়া, যিনি জগৎকে মোহিত করেন, এই সমস্ত বিশ্ব জগতের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি হলেন জগৎ জনদের দুর্গা। এই ব্রহ্মাণ্ড রূপী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি হলেন দুর্গা। আর যোগমায়া কৃষ্ণ লীলার সহায়কারিণী, যত সমস্ত ভক্তগণ ভগবানে আরাধনা করেন, তাহাদিগকে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ করান, তাহাদিগকে মিলন করান, এই হল যোগমায়ার কার্য। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজ করেন, সেই সময়ে তিনি যোগমায়াকে আবাহন করলেন, যোগমায়ে আজকের এই লীলার মধ্যে কেবল ব্রজগোপীগণের প্রবেশের অধিকার, কিন্তু সেই প্রবেশের মধ্যেও কাকে টিকিট দিতে হবে, কাকে টিকিট দেওয়া হবে না, সেটা তুমি নির্ণয় করবে। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে গেটটি পার করে ওই টিকিট কাউন্টারে বসিয়ে দিলেন, বলে যত বদি আসছে সবাইকে তুমি টিকিট বিতরণ করবে। এখন তাই তিনি এখন টিকিট বিতরণ করতে লাগলেন, করতে করতে এখন দেখা গেল যারা প্রতিপুত্রবতী তারা এখন কৃষ্ণকে চায়, বলে বারে সেদিকে সেদিকে সংসার শুভ করবে, আবার ওপর দিকে বলে কিনা কৃষ্ণকে চাইবে, একটা দিক না ছাড়লে হবে না, অতএব ছাড়তে হবে তারপরে আসতে হবে, আগে সংসারে মায়ামি ছাড়ো তারপরে নিয়েছে, তা না হলে আসতে পারবে না, এখন যোগমা দেবিয়া টিকিট দিলেন না, বলে নানা টিকিট হবে না যাও ঘরে। তো এই ঘরে ভাবল এখন তাদের পতিরা কি করলো, এখন লাঠি নিয়ে দল নিয়ে লড়াইল, বলে এই যাবে কোথায়, গেলে এক্ষুনি তোমাদের মাথা ফাটাবো, পা গুলি ভেঙে রেখে দেবো, তোমরা শুধু ঘর থেকে পালিয়ে যাও আর যেতে দেওয়া হবে না। এইভাবে যোগমা দেবী এমন করে দিলে না তারা তো ঘর থেকে বেরোতে পারে না। কৃষ্ণ বিরহ তীব্রতাপে এমন ভাবে অবীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন যে কাঁদতে কাঁদতে প্রভুপতি জনের সংসারের প্রতি মোহ আসক্তি স্নেহ প্রতি ভালোবাসার সব কিছু বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অপরদিকে কৃষ্ণের প্রতি প্রজারও স্নেহমতা যুক্ত হয়ে গেল, তখন আর তাদেরকে কেউ আর আটকে রাখতে পারল না। যখন গুণময়ন দেহ যোগমায়া দেবী তাদের এই গুণময় শরীরটিকে সরিয়ে দিলেন, অলক্ষণ ভাবে সরিয়ে দিয়ে অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের নিকটে তৎক্ষণা পৌঁছে গেলেন। এইভাবে যোগমায়া দেবী কি করেন, ভক্তগণকে যাহাদের কথায় আছে তাহাদের সেই সমস্ত কথায় গুলি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য সংসার আসক্তি বিষয় প্রীতি এই সবগুলিকে ছিন্ন করিয়ে কৃষ্ণের চরণে তাহার সেবায় উদ্বুদ্ধ করা, তাহার সেবাতে নিয়োজিত করেন, এই হল যোগমায়া দেবীর কার্য। আর অপরদিকে মহামায়া, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রূপী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সাধনকারিণী, সাধন শক্তির একা ভুবনামি দিবর্তি দুর্গা ইত্যাদি রূপম অপি জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ চেষ্টতে সা গোবিন্দ মাদি পুরুষম তমহম ভজামি। এখন ছায়ৈবযস্য ভুবনানি বিবর্তি দুর্গা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তি রেখা, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী শক্তি, সেই দেবী দুর্গাকে বলা হলে ছায়ৈবযস্য ভুবনানি বিবর্তি দুর্গা, তাহাকে ছায়া শক্তি বলা হল। ভগবানের একটি হল স্বরূপ শক্তি, যাহাকে অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি বলা হয়, আরেকটি শক্তির নাম হল জীব শক্তি আবাস স্থানীয়, আর তম স্থানীয় অন্ধকার স্থানীয় সত্যরজতম গুণাত্মিকা সেই হলেন মহামায়া, তাহাকে বহিরঙ্গ শক্তি তাহাকে দুর্গা দেবী বলা হয়। তিনি কি করেন, জীবজনকে মোহিত করে, এই জন্য দুর্গা বলা হয়। আবার বললেন কি, যা পরা পরম শক্তির মহাবিষ্ণু স্বরূপিণী যা বিজ্ঞান মাত্রেণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির ভারতি লন্ন ফা, বললেন কি যা পরা পরমা শক্তি, সেই পরমা শক্তি তিনি কে যোগমায়া দেবী, তিনি কে রাধারানীর এক প্রকাশ, যা পরা পরমা শক্তির মহাবিষ্ণু স্বরূপিণী, মহাবিষ্ণু স্বরূপিণী তিনি হলেন রাধারানী অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি, যাহার অনুভব যাহার কৃপা করুণায় কৃষ্ণ প্রাপ্তির ভবতী, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে থাকে, নন্যথা তাহার করুণা না হলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। আবার বললেন কি, অত্যাবরিতা শক্তির মহামায়া অখিলেশ্বরী, সেই রাধারানীর এক প্রকাশ যাহাকে আবরিতা শক্তি বলা হয়, জীবজনকে এই শরীরের দ্বারা আর বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, এই শরীরের দ্বারা আবরণ করে দিচ্ছেন, সেই জন্যই তাহাকে বলা হল আবরিতা শক্তি। সত্য রজতম গুণের দ্বারা এই আবরণ করে দিয়েছে আমাদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি সব কিছুই আচ্ছাদিত এই তিনটি গুণের দ্বারা। এই জন্য দেবী দুর্গাকে আবরিকা শক্তি বলা হল। আচ্ছা আবরিকা শক্তির মহামায়া অখিলেশ্বরী, তিনি হলেন মহামায়া অখিল বিশ্বেশ্বরী। এইভাবে দেবী দুর্গা তিনি কি করেন, সমস্ত জগৎকে পরিচালনা করে। তিনি হলেন কে, শিবের ঘরণে, শিবের পত্নী শিবানে। কিন্তু অনেকে আছেন দুর্গাকে বিষয়ে অনেকে বলেন যে না কালী কৃষ্ণ স্বামী, আবার নবদ্বীপে দেখতে পাবেন এইখানে কালী রাস। আরে মা কালী রাস করার জন্য ভগবান কৃষ্ণ রাস করেছেন, কৃষ্ণ এখন গোপীগঞ্জকে নিয়ে রাস করেছেন, কালী এখন কোন কাকে নিয়ে রাস করবেন? এখন নবদ্বীপে বুঝবে সে মত খেয়ে নাদানাদি করে, তারা বলে কিনা আমরা রাস করছি, সকলেই ছুটে আসে রাস দেখবার জন্য। আরে বাস্তবিক কৃষ্ণ রাস হোক, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের রাস হয়, লীলা অভিনয় হয়, দেখবার মতো হয় সেই সমস্ত রাস দেখে। আবার অনেকে আছেন কালী কৃষ্ণ সব এক করে বসে আছে, এখন কালী কৃষ্ণ এক করলে কোন দিক দিয়ে করবে? তারা তো ভাই বোন, আপনারা শুনলেন এক করে ভাগবতের কথা বললাম, ভাই বোনে কি আর সংস্কৃতি মতো ব্যবহার করবে না? পতি পত্নী হলেন ভাই বোনে কি করে হবে? অপর দিকে যদি দেখা যায় শিবের ধরণী শিবানী দুর্গা দেবী, এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি তাহাকে হরণ করে নিয়ে তার সঙ্গে লীলাবিলাস করবেন? সেটা কি সম্ভব? কোন কথাতেই সম্ভব নয়, কোন কথাতে যুক্তিপূর্ণ নয়। সমস্ত অযৌক্তিক কথাগুলি মানুষের মাথায় ঢুকে আছে, এই ভ্রমগুলি তারা নিজেরা সমাজে বাস করতে গিয়ে সেই সমস্তগুলি অসামাজিক তত্ত্বগুলিকেই দেবী দেবতার মধ্য দিয়ে ভরে নিয়েছেন, নিয়ে নিজেদের সমাজকেই বিধ্বংস করে ফেলেন, কোন সমাজের হিতকারী হয় না। এই জন্য বললেন কি, দেবী দুর্গা জগত জননী, তিনি হলেন মা, তাহাকে প্রণাম করো, ভক্তি করো, শ্রদ্ধা করো। যোগমায়া দেবী, তিনি ভক্ত জনকে ভক্তি দেন, ভগবানের সঙ্গে সংযোগ করান। অতএব সেই কথাটি মানতে হয়, কুলদেবী যোগমায়া মরে কৃপা করি, আবারও সুন্দরী হয়ে কবে ভীষ্ম করি। শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি কীর্তনের মধ্য দিয়ে বলে গেলেন। আবার সেই জন্য আমরা সেই পৌরা মায়া দেবী যোগমায়া দেবীর চরণে আমরা শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করি, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। সেইভাবে এই যে সিদ্ধ মন্ত্র ভাগবতে বর্ণন হয়েছে, গোপীগণ বর্ণনা করেছেন, কাত্যায়ন নামে কোন এক ঋষি সর্বপ্রথম এই দেবীর আরাধনা করে এই মন্ত্র সিদ্ধি করেছিলেন, এই জন্য এই দেবীর নাম হল কাত্যায়নী দেবী, পৌরা মায়া যোগ মায়া দেবী। আমরা তাহার চরণে প্রার্থনা জানাই, প্রণাম করি, তিনি যেন আমাদের প্রতি অহেতুকে ভক্তি প্রদান করেন, রাধাগোবিন্দের চরণে আমাদের হৃদয়ে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা যেন সব কিছু আমরা ঢেলে নিতে পারি, সেইটুকুই তিনি অনুগ্রহ করুন। আমরা যে স্থানে বসে আছি এই হল আমাদের পরমারাধ্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ভগবান বিষ্ণুপাদ শ্রীনাথ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, তাহার ভজন গুটি এবং সমাধুটি উভয়ে আমরা শুনেছি গুলবর্গের মুখ থেকে। পূর্বে তিনি রাধা কুণ্ড এবং সূর্য কুণ্ড থেকে ভজন করেন, বৃন্দাবনে সূর্য কুণ্ডে রাধা কৃষ্ণের যেখানে সূর্য পূজার ছলে নিত্য বিহার নিত্য মিলন হয়, সেই নিত্য মিলন ক্ষেত্র সূর্য কুণ্ড থেকে তিনি ভজন করতেন। তারপরেই তিনি আবার নবদ্বীপে চলে আসতেন, বয়স তাহার 144 বছর পর্যন্ত ছিল। সেই সময়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাকে ওই পারে নিয়ে যান মায়াপুরে, সেইখানে নিয়ে গিয়ে তাহাকে দিয়ে ওই মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার করাইলেন। তখন তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করলেন, করেই তিনি বললেন এই হল মহাপ্রভুর জন্মভূমিকা। তখন তাহাকে স্পর্শ করে আনন্দিত হলেন, নৃত্য করলেন। একটি জমিতে স্থানকে নির্ণয় করে বললেন এইখানে মাটি খোঁড়ো, সেইখানে মাটি খুঁড়তেই দেখা গেল শ্রী জগন্নাথ মিশ্র, তিনি যে অলক্ষ মূর্তির পূজা করতেন সেই মূর্তি এবং কুর্মদেব সেইখান থেকেই প্রকাশিত হল। তাহাকেই সেইখানে স্থাপন করে আজও সেই যোগপীঠ মন্দিরে সেবা পূজা চলে আর সেইভাবে হয়ে আসছে। অপরদিকে শ্রী জগন্নাথ দাস বালাজি মহারাজ, তাহার তো বহু চরিত্র বহু কথা, বৃন্দাবনের সূর্য কুণ্ডে যখন তিনি ভজন করতেন শিষ্যজনকে বলতেন এই ফুল গাছ লাগাও, বেগুন গাছ লাগাও, এইসব করো, তারা বলে কিনা বাবা আমরা এসেছি অস্ত কালিয়ে লীলাস্মরণ করবো, আমরা অস্তযাম ভজন করবো, আর আমরা এই বেগুন গাছ লাগাবো, আমরা তো ঘরে বেগুন গাছ লাগাইতাম, ধান ক্ষেত করতাম, সব কিছু কাজকর্ম করে এসেছি, আবার মঠে এসে কাজ করতে হবে, কে আবার কেমন ধরে রেখা, তারা কেউ করতে চায় না, মুখ ঘুরিয়ে নেয়, এখন গুরু লাগে তো অভিজ্ঞতা করাও যাবে না, তাই করে মনে মনে শুনছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেখানে গিয়েছে, যেতেই এখন ওনার কাছে এই প্রশ্ন রেখেছে যে আমরা তো ভজন করতে এসেছি আর আমাদের এমন কাজের কথা কেন বলেন। তখন বললেন দেখো যদি এই কাজ না করো তোমাদের এই যে ভিতরে যে ময়লা গুলো আছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য অনর্থ গুলি কি করে দূর হবে, এইগুলি যদি সেবা না করো তাহলে হরিনাম মুখে ধরবে না, হরিনাম করলে আর লীলা চিন্তন করলে কি হবে, ওই কাম বাসনা জানবে, একজন স্ত্রীকে দেখে সুন্দরীকে দেখে কি করে তাকে উপভোগ করবো, আর কোন ছেলে তাহার সঙ্গে কথা বলবো, আর কি করে প্রেম করবো, সেই জন্যই সব সময় লালায়িত হবে আর ওই দিকেই ছুটবে, তখন রাধাকৃষ্ণকে পারবে না, থাকবে না আর ভজন হবে না, এই জন্য আগে অনর্থ দূর হোক তারপরে ভজন করবে সেবা করবে, না তো মলিন হৃদয়ে ওই রাধাকৃষ্ণের লীলা চিন্তন করতে বলছেন ওই সুরা সুন্দরীর চিন্তা হয়ে আর কোনো চিন্তা আসবে না, এই জন্য হাতে কাজ করো মুখে নাম করো, হৃদয় শুদ্ধ হোক আর পবিত্র হোক শুদ্ধ নাম মুখে বেরো তারপরে তোমরা লীলা চিন্তন করবে, আগে সাধক না হোক আর শুদ্ধের চিন্তা করলে কোনো সিদ্ধ হওয়া যায় না, গাছে না উঠে ফল পাড়বার চেষ্টা করলে কোনদিন সম্ভব নয় ফল পাড়ানো, সদ্রুপ ভাবে আগে আসক্ত হয়ে প্রত্যেক চিন্তা করলে হয় না, কাঁঠালগুলি যেমন কাঁচা কাঁঠালগুলি ওই গরমের মধ্যে রেখে দিয়ে পাকিয়ে নিয়ে আসে বাজারে, এখন পাকা কাঁঠাল তো পাওয়া যায় না, ওই যেমন ওই পাকা কাঁঠাল এসে গেছে না 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 ছড়িয়ে খাও, সেগুলো যে একটাও পোয়া খাওয়া যায় খাওয়ার উপায় নাই, কেন এগুলো পাকা তো এইরকম ভাবে যে সমস্ত সাধক সাবিতা সুশৃঙ্খলতা করে যারা ভজন সাধন গুরু সেবা বৈষ্ণব সেবা না করে কেবল রাধা গোবিন্দের লীলা চিন্তন করবার জন্য প্রয়াসী হয় কোনদিন কোন কালে তাহারা পারদর্শী হতে পারে না, সেই জন্য বাবাজি মহারাজ তিনি এই শিক্ষাগুলি দিয়েছেন ভজন করতে গিয়ে তাহারা অনুভূতি করুন সিদ্ধ ভাগবত মহাভাগবত তাহারা এই স্থানে যখন ভজন করতেন কতগুলি কুকুরকে খাবার দিতেন, বললেন কি এরা ধানের কুকুর এদেরকে খেতে দাও, ধানবাসী এরা কতগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এখন তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না, অতি বৃদ্ধ হয়েছে তখন তাহাকে সরিয়ে কুকুরগুলিকে সরিয়ে দেয় এরা, বলে বলে কি আরে কোথায় গেল এই করে কিনতে থাকেন তাচ্ছে কুকুরকে, এখন বলেন কি আরে তোমরা জানো না এরা ধানের কুকুর এরা নিষ্কপট প্রাণী এরা কোনদিন কপটে বের করে না, কিন্তু মনুষ্য জীবন লাভ করে সাধন ভোজন করতে গিয়ে ছল কপটতা আর অনার্থগ্রস্ত, ওদের থেকে তো অনেক ভালো ওই ধানের কুকুর নিষ্কপট প্রাণী, এইভাবে শিক্ষা দিতেন বহু প্রকারের শিক্ষা তিনি দিয়েছেন বৈষ্ণবগণ আরো বলেছেন, আমি অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি সেই কারণে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি, And then, now that we, as it actually is, becomes revealed. So we're chanting here and there, we're going on Parikram, we're going on Nanda Sankirtan. We should be chanting and hoping that that same experience happens to us. That somehow or other, Yogamaya will show us some mercy and lift that covering, and for some brief moment, some mercy will come into our hearts. As Jagannath and Vijay Kumar, his uncle, were able to see after having the blessings of their Guru days, they were walking in Navadvipa, and then all of a sudden, they saw beautiful palaces, they saw Mahaprabhu, they saw the Kirtan party. This is what awaits us when we get the mercy and blessing of Yogamaya. So you should think like that. When we go on this Nanda Sankirtan, you should be chanting and looking everywhere. Where's Mahaprabhu? Where's Nityananda? Where's Jagannath Mishra? Where's Shachimata? This eagerness, this desire, and how do we get it? We pray to Yogamaya, please lift this veil, impart into our hearts this mood of pure devotion, this mood of pure seva to see Chaitanya Mahaprabhu that we can engage in these pastimes as well. So this is Yogamaya. We go to her and we pray. Her other feature as Mahamaya, she covers and influences the atheistic, the materialistic person. In Mathura, as in Vrindavan, as Yogamaya and Vrinda Devi, in Mathura, Mahamaya is there. And she influences the demons like Kamsa and others, and they worship her. We are interested in gaining the mercy of Kodamaya. And then gradually, by her instruction, Mahamaya will lift step by step. At the moment, we're covered in ignorance, passion, maybe some goodness in us. But gradually, Mahamaya will lift the influences of Tamagun and Rajagun, and gradually, Sattvagun will arise in us, and then some appreciation and understanding for Tattva, some removal of the gross and nonsense, some capacity for Nishta and steadiness in our service will take place by the mercy of Mahamaya, and then we become qualified for this greater influence. And then the other way that we get this is by the mercy of the great devotees, and we are so blessed to be very close, right across this kund, is the place of Jagannatha Babaji Maharaj, Vaishnava Sarvabhoma Sri Jagannatha Babaji. He is such an important personality in our Sampradaya. He was, by the time of Bhaktivinoda Thakur, he was the most senior of all Vaishnavas in Vrindavan and also Gaudamandala, all of Bengal. All the Gaudiya Vaishnavas recognized him as the most learned and the most profoundly realized in Bhakti Tattva and Bhakti Rasa. He was the repository, the storehouse of all of this nectar and wisdom. He was a disciple of another great Babaji who we heard about in Vrindavan, Srimadu Sudan Babaji. He was also the primary guru, Shiksha Guru of Srila Bhaktivinoda Thakur. We know that Srila Bhaktivinoda Thakur had initiation, formal Shiksha initiation, from another personality, but we don't hear so much about him. But Jagannath Das Babaji Maharaj was specifically noted and indicated by Srila Bhaktivinoda Thakur as the link in the Bhagavad Parampara from Srila Bhaktivinoda Thakur to him. And it was by the mercy of Srila Jagannatha Babaji Maharaj, when he was preparing to leave this world, he blessed Srila Bhaktivinoda Thakur with all of his understanding of Tattva, all of his profound realizations of the scripture, and all his deeply understood and experienced understanding of Ras Tattva. Everything that Bhaktivinoda Thakur received, he received from the grace of this Vaishnava Sava Goma Srila Jagannatha Babaji Maharaj. We don't hear a great deal about him, but our debt to him is unlimited. He had a very interesting pastime. When he was in Vrindavan, he was worshipping in the area of Suryakund. And it was there he had many, many different people who were coming here to him to learn about Ashtakarya Leela. And this requires a very elevated and qualified disciple to know this and to practice meditation Ashtakarya Leela. So he was giving his disciple instruction, and he told them,
not to meditate on this Ashtakarya Liya yet. You're not qualified. Instead, you grow eggplants. You grow flowers. And with these things, you worship the deity. And by developing a connection and a relationship with the deity in this service mood, gradually all of your nausea will lift. And then you become qualified for this. These people were not satisfied with this. And then, also today, many people want to come to Vrindavan and enter instantly into Ashtakarya Lila. So we have so many, especially from various countries like, I shouldn't say it, Russia and other places, where they want to instantly go into Ashtakarya Lila, and they go to Radha Kund, and they try to hear from some Babaji and think that this makes them qualified. But this is not the process. And when these people complain to Bhaktivinoda Thakur, oh, we want to hear Ashtakarya Lila, our Gurudev is not understanding our wish, he's checking our desire. Please help us, you speak to him. Bhaktivinoda Thakur, he was not sympathetic to their mood. And he explained to them what I just said, that actually your Gurudev has understood perfectly your level of eligibility. And it is by this statement to the deity at your current stage that you will become eligible. Only by the mercy and instruction of Sri Guru can you take the proper steps to enter into this. And only when he's prepared to give you this knowledge and understanding will you be ready and qualified to hear it. This is a lesson which all of us must take. So, later on, by the inspiration of Mahaprabhu, Sri Chaitanya and Krishna, he came here. Jagannath Das Babaji Maharaj came here. And he was very old. He left this world in 1897, and at that time, he was 144 years old. And because of his great age, he was apparently very infirm. He used to be carried around in a basket by his disciples because he could barely walk. And he was practically blind because his eyelids would droop so far over his forehead that he would have to lift them up even to peer out and be able to see. And he was very, very attached to the real residents of the Dham. Who were those residents in his eyes? He saw all the animals in Vrindavan at Dham Bhakti. He was very attached to the cows, the dogs, the puppies. He had great honor and respect. And sometimes he would be given a lot of money from different people who wanted his blessing. And he would take that money and he wanted his disciples. You please put on a grand festival by Rasula, sweets, all these wonderful things. And put on a great, great feast. And his disciples would say, yes, we put on a great feast. We'll invite all the Babaji's, all the Brahmins. And he said, no, don't invite these bogus Babaji's, these so-called Babaji's. Instead, I want you to invite all the cows and the dogs of the Dham and give them the prasadam. And he said, what? The dogs and the cows? No, you don't understand. These are the real Dham Bhakti. He had that same mood as Sanatana Goswami and as pure devotees who could see the Dham as it is. He saw everyone and the Dham residents for who they truly were. In fact, when he used to take his prasadam, he would sit down in the there, and he couldn't see very well, and he would sit down and they would bring it to him on a plate. And nearby his residence, one dog was the dog and his puppies. And so, he would call the dog and all the puppies, and he would have them eat off his plate. And his disciples were aghast. What? Dogs eating off the plate of our Gurudev? Contaminating the prasad? This is improper, and they would hide the puppies and not let them come when it was time for prasad. But Jagannath Das Babaji Maharaj had such affection for these puppies as not mundane, not like us, but as residents of the Dham, he would sit there and with his hands he would talk. And when all the puppies were there, he would have them take from his plate and then he would take when they were finished. Such an understanding he had. And so, since the Mahdi is there, we should take his blessings. And throughout this entire program, be conscious. This is the place of a great eternal ascension to Mahaprabhu. We seek their blessing. We seek their mercy. We seek the mercy of Jogamaya. We seek the mercy of the Dham itself. Please take this note of humility and fervor in our hearts, and our program will become successful.
लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना मेरे को आते तरह जाता है। इसलिए लड़ना भिड़ाना मैं आते तरह नहीं जानता। मेरे बेटा मेरे समय कथा कहीं बेटा है कहते हाँ है एक बड़ा भगवान बड़ा अवतार लेकर के विष्णु ये पृथ्वी के उत्तर में कर रहे हैं, वही आपके बराबर जो था क्या उनसे मिलो। आपका गाँव में जो खुजलाट आ गए वो खुजलाट होकर अगर मिटा सकता है तो भगवान विष्णु ही मिटा सकते हैं। पृथ्वी से आकर के देखते हैं भगवान बढ़ा दे वो पृथ्वी को अपना दंता देने पृथ्वी को उत्तर में कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसकी युद्ध करूंगा कि तो ग्राम स्वर है स्वर से भी क्या युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा थोड़ा सा रुक जा तेरे जैसे गाँव कितने सारे कुत्ते को मैंने देखा है अभी तेरे को मैं दिखाता हूँ। ये पृथ्वी का अपना धूरी बर स्थापन करके तो भगवान पृथ्वी का अपना धूरी बर स्थापन करके उन्होंने हिरणाक्ष के साथ में उन्होंने घमासान युद्ध की। युद्ध करते करते सतम से हिरणाक्ष में इतना पराक्रम था क्योंकि भगवान की मन में इच्छा थी मैं तो अखिल रसामृत मूर्ति हूँ लेकिन होने पर भी रस द्वादश रहते हैं लेकिन एक रस तो मैंने आस्वादन की नहीं। कहते वो कौन सा रहते है कहते तीन रहते है। अभी दिन रस भगवान किसके साथ में युद्ध करे इसलिए भगवत इच्छा से ही भगवान को दूर रस आस्वादन करवाने के लिए अभी साक्षात जय विजय ही ये हिरणा के हिरण रत्न रूप में आई और यही पर भगवान की हिरणाक्ष के साथ में युद्ध हुई। युद्ध करते करते यही पर भगवान बढ़ा दे हिरणाक्ष को यही पर वध किया था इसलिए ये स्थान का नाम श्री कोलदीप कोल मतलब श्री बढ़ा देव का स्थान। यही पर वासुदेव मित्र हुए भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधना करते करते बढ़ा देव का आराधना करते करते यही पर उन्होंने बढ़ा देव की दर्शन भी मिला और श्री सचिनंदन गौर हरि का दर्शन उनको यही पर प्राप्त हुआ था। जिस स्थान में बैठे हुए ये ऊंचा स्थान है कभी ये पंच बनी है मतलब देखो ये धाम परिक्रमा करने पर 90 दिन धाम परिक्रमा करने पर आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। 90 दिन धाम यदि कोई परिक्रमा करे अन्य कुछ जाना दरकार नहीं। जब जैसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण तीन जखन रेखा ने अलग समस्त पृथ्वी समस्त तीर्थ तार कृपा बार रेखाने पर सब एक बस जाती एखंड पंचवेणी ये स्थान पंचवेणी हलो गंगा यमुना सरस्वती अलकानंदा भगवती भगवती जितना सारे तीर्थ है ये सारे के सारे यहीं पर है। यहीं पर ब्रह्मा कितने हजार उन्होंने अष्टम यज्ञ उन्होंने यहीं पर किए और ये जो स्थान है कभी ये प्रयाग है यहीं पर प्रयाग है जहाँ पर हम लोग बैठे इसलिए तीर्थराज प्रयाग अभी यहाँ आने पर हमें तीर्थराज प्रयाग जाने का कोई जरूरत नहीं। यदि एक हमें कहीं ऐसे परिक्रमा करे तो तीर्थराज प्रयाग जाने का कोई दरकार नहीं। एक हमें परिक्रमा कर ले तीर्थराज प्रयाग है परिक्रमा फल पा जाए और हम लोग जहाँ बैठे हुए स्थान क्या है सभी गिरिराज गोवर्धन है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं सख्त गिरिराज गोवर्धन। इसलिए यहाँ पर आने पर जो सर्वाधिक प्रदाता जिसको रूप रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं समय मदन मिला तंदर तंदर तेरसे नव जून द्वंद नस्मी मंदम इंत कील कलनार्थ लग्न तौर में निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णाकम गिरिराज गोवर्धन के चरण में सदा की प्रार्थना करते हैं क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं हो तब तक राधा कृष्ण का प्रेम रस में राधा कृष्ण का जुगल प्रेम रस में ही प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम उद्धव भी ब्रज में आकर के जब ब्रज गोपियों की प्रेम की सर्वतमता उनको पता चला उन्होंने कहाँ पर आश्रय लिया तो गिरिराज के तलहटी में उद्धव कुंड पर। नारद जी को जब पता चला गोपियों की प्रेमी सर्वोत्तम है उन्होंने कहाँ पर आश्रय लिया तो गिरिराज के तलहटी में आश्रय लिया। इसलिए हमारे कितने सारे दोस्तों ने भी गिरिराज के श्री चरण में आश्रय लिया इसलिए उनके इच्छा के बगैर जीव को कभी प्रेम प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए अभी हम जहाँ पर बैठे ये गिरिराज गोवर्धन और यहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड यहीं पर है इसलिए यहाँ नवद्वीप धाम परिक्रमा करने पर जीव को समझे सारे तीर्थ में जाना हो गया है और हरिकथा रूपी मंदाकिनी में पता लगाओ तो फिर तो और कुछ चीज मिलता है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यवान है श्री गुरु जी को अनुगत में श्री राम नवद्वीप परिक्रमा करने के लिए आए हैं प्रभु की निंदा ने गौर आई की। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, यहाँ पर दर्शन करते हुए जब हम आ रहे थे, बीच में श्री प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब पुराना, पुराना मतलब पुराना है, इसलिए ये कौन है, कभी योग माया है। हम लोग श्रवण कर रहे थे ये योग माया जीव को कितने रूप में जीव को भगवत भजन में मदद करती है। इसलिए कभी योग मतलब होता है जोड़ना। और अभी अभी एक कीर्तन भक्त में ठाकुर का कीर्तन है, कहते भवर न दे परी मोर आको लाना किसे को न पावतार न पाई संदाना। भक्त में ठाकुर ये कीर्तन में कहते हैं कि जीव जब भगवान को भूल जाता है, हाँ किसान सफेद कहते भयम दिपर जय स्मृति, तो जीव जब चतुस्था शक्ति से जीव जब प्रकट हुआ, तब एक तरफ में भगवान का जगत है और एक तरफ में माया की जगत है। जीव बीच में खड़े होकर के कभी भगवान के तरफ में देखता है, जिधर भगवान खड़े है उधर संपूर्ण प्रकाश प्रकाश है, और उधर एक संत खड़े होकर के बुलाते भैया इधर आ जा उधर मत जा, और जिधर माया खड़ी बड़ी सुंदर माया खड़ी, हम खड़ा घनाघोर जंगल है, हिंसक जंतु भूत पिशाच बड़ा भयंकर स्वरूप है, जीव अभी बीच में खड़े होकर के कभी भगवान के तरफ से देखता है, कभी माया के तरफ से देखती है, माया इधर बुलाती है, कभी उधर क्या करोगे बेटा रे, ये हरे कृष्ण करने से क्या होगा, देखो मैं कितने प्यारी हूँ, इधर आओ बेटा, इसलिए कभी इधर बुलाती है कभी इधर देखती है। अब ये बीच में अभी खड़े होकर कभी इधर इधर, लेकिन जीव इतना छोटा है और माया की शक्ति इतना बलवती, माया की शक्ति जीव जानता है, जगह अंधकार है घनाघोर जंगल है भयंकर स्वरूप है, तब भी जीव भगवान का तरफ नहीं जाता है, तो माया के तरफ में चली जाती, संत बुला से खबरदार उधर मत जाओ इधर आओ, लेकिन उन्हें जाता ही नहीं, तो माया के तरफ में जान बुझ करके उधर ही छलांग लगाती है। इसलिए जीव जब भगवान को भूल करके जब माया के तरफ में छलांग लगाती है, उसी समय माया उसको दो पोशाक पहना देती है, कहते एक आवरण आत्मिक और एक विकृत आत्मिक, कहते आवरण आत्मिक द्वारा उसको ढक देती है, जिसको खिड़ी जल साग और गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर, ये पंच भौतिक शरीर तय करके, और विकृत मतलब होता है फेंकना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, कभी सूक्ष्म शरीर दे करके इतना जोर से उसको फेंक देती है, जो जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम जो कृष्ण का नित्य दास है जिन संपूर्ण भूल जाते हैं, अगर पूछे तो अभी तुम कौन हो, कहते मेरा नाम ये है, मैं रहता हूँ वहां पर, ये मेरे बीवी है, ये मेरे बच्चे है, मेरे घर है, इसका परिचय है, ये संपूर्ण माया में कद अपेत विपर्जय स्मृति, संपूर्ण बुद्धि विपर्जय हो गया भ्रमित हो गया है, इसलिए झूठा चीज को भी ये माया में इतने शक्ति, इसलिए कृष्ण कहते हैं दैवी के साथ गुणमयी मम माया दुरुस्तया, ये दैवी माया को पार होना कठिन है, हम सब भी जानते हैं ये माया माया, हम सुने गुरु वैष्णव के पास में भी आकर के ये माया है अनिश्चय है, तभी हम छोड़ नहीं पाते, सब कुछ जान बूझ कर भी हम छोड़ नहीं पाते, तभी माया की इतनी प्रगति सकती है। हाँ कहते माम एवं जो प्रबंधन थे मायाम एकाम चरंती थे, भगवान कहते जो मेरी चरण में शरणागत होते हैं वही व्यक्ति ही माया से पार पा सकते हैं, नहीं तो ये माया से पार पाना बहुत कठिन है। अभी भी जीव का विसर्जन स्मृति हो गई, लेकिन अभी जीव का कल्याण कैसे होगी, तो जब जीव इसलिए कहते कुल जभी योग माया मोरे कृपा करी आवरण संभरी वे तब विश्व करी, अगर जीव ये योग माया को अगर शरणागत हो जाए तो उसी समय यही योग माया ही जीव को भगवान के साथ में जोड़ देती है, फिर तो जीव को फिर संसार से फिर जीव का कहीं उद्धार होने का स्थान से कल्याण है। इसलिए कहते ये योग माया कहते भगवान और भक्त कहते दोनों को मोहित करती है, दिव्य लीला में भगवान की, इसलिए कहते लीला वैसे प्रभु नाही अनुसंधान इच्छा जारी लीला शक्ति कर समाधान, कहते श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कृष्णा कहते लीला को आवेश में उनको पता ही नहीं, उनको देह का अनुसंधान नहीं, लेकिन उनको इच्छा जान करके ये योग माया उनको सारे लीला को समाधान करती है, इसलिए ब्रज में भगवत धाम में यहाँ पर जो समस्त कार्य जितने सारे कार्य सिर्फ भगवान का नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ईश्वरी है सिर्फ योग माया, जैसे हमको एक दो उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कृष्ण ने मिट्टी खाई तो मैया आकर पूछती है क्यों लाला तेने मिट्टी खाई, तो मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कभी सखा लोग बोलते तुमने मिट्टी खाई हो, कहते मैया किया हुआ जानते हो आप, तब आज मैं सखाओं के साथ में खेल रहा था और खेलते खेलते आज मैंने सभी को परास्त कर दिया, इसलिए सखा लोगों ने आज मेरे साथ में टिक नहीं पाए, इन लोगों ने एक गुंड बना दिया, कहते आज कन्हैया को हम मार खिलाएंगे, इसलिए तू तो गोली मार ली, इसलिए तेरे पास में जाकर के झूठ मुठ कर शिकायत किया है। लेकिन मैया को तो पता है कन्हैया कितना धूर्त है, कितना दुष्ट है। कृष्ण ने सोचा अगर मैया को थोड़ी बहुत बात में अगर बोल दू, बोल सकता है मैया बोलेगी नहीं सचमुच से कन्हैया खाई नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा मैया अगर मैंने मिट्टी खाई तो ये मुंह से तो खाई थे ना, तब अगर मिट्टी खाई तो मुंह खोल कर देख लो। तो कृष्ण सोच रहे थे अगर मैं बोलूं ये मुंह खोल कर देख लो तब मैया बोलेगी नहीं मुंह और खोलो मत। लेकिन मैया तो बड़े चतुर है जानती है, इसलिए कृष्ण ने मैया बोली मुंह खोल मुंह। इतने में मैया की एक धमकी पास ही इतने में कृष्णा अपना मुंह खोल दिया। देखो ये लीला शक्ति क्या काम करती है, इसका केस किस काम है। अभी कृष्ण की जो इच्छा है क्या इच्छा है, कभी कृष्ण की इच्छा है अगर मैया मेरे मुंह में मिट्टी देखी तो क्या करेगी, हाथ में डंडा है एक एक डंडा नीचे नहीं गिरेगा सब पीठ के ऊपर में गिरेगा। कृष्ण की इच्छा ये है, इसलिए मैया को जिसे पता नहीं चले मैंने मिट्टी खाई। अभी कृष्ण की ये इच्छा जानते ही झट वहां पर जोग माया प्रकट हो जाती है, उनको लीला शक्ति जोग माया प्रकट होकर के जोग माया देखती है अगर मेरे प्रभु पीट गए मार खा लिया फिर मैं जो लीला शक्ति हूँ मेरे ऊपर में दोष आ जाएगी पट्टा लग जाएगी, इसलिए मेरे प्रभु मार नहीं खाए कृष्ण का इच्छा नहीं मैं पिट जाऊं। इतने में उनको इच्छा जानते ही कृष्ण को मुख में ये जोग माया लीला शक्ति अनंत गति विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा देती है। इसलिए मैया देख करके कुछ आश्चर्य हो गई, मैं क्या देख रही हूँ विश्व ब्रह्मांड इसके मुंह में। इसलिए मैं मैया सोच रही हो ना हो मेरे लाला ये तो भगवान नहीं। अभी कृष्ण सोच रही है मैया की भ्रमित हो गई, अभी सोच रही हूँ मैं तो भगवान नहीं, अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ फिर मैया क्या करेगी। तो जैसे अपना घर में नारायण के लिए छोटी सी घर बनाए और थोड़ी सी माता का भोग लगा करके तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो तुम्हें वम शिक्षम द्रव्य तुम्हें वो तुम्हें वम सर्व मम देवद जिसे बोल करके माता से भोग लगाकर दरवाजा बंद कर देती मेरे लिए भी ऐसी मैया की छोटी सी मंदिर बना देगी और मेरे को भी अंदर में घुसा करके ताला बंद कर देगी, फिर तो मैं सखा के साथ में खेल नहीं पाऊंगा फिर क्या होगा। इसलिए मैं कृष्ण के मन में इच्छा सही उनको लीला शक्ति उनको इच्छा जान करके फिर सारे विश्व ब्रह्मांड को पुनः उनको मुंह से अंतर ध्यान कर देती। फिर मैया जो सीधा देखती है वही बच्चा हाँ छोटा सा लाला वही कन्या कुछ नहीं, कभी कितने सब काम है कभी सबके सब ये जोग माया उनको लीला शक्ति की सारे काम है जो कृष्ण की इच्छा जान करके सारे लीला को जो समाधान करती समझो कृष्ण का लीला सबके सब वही करे। इसलिए कहते कृष्ण को भी मोहित करती है तब उनको भक्त को भी मोहित करती है, जैसे उनको काम वसुधाम श्रीधाम मधुमंगल है। अगर इन लोगों को पता चले मैं भगवान हम सबसे सब कृष्ण का सखा साधारण तो है नहीं, उनका इतना शक्ति है करोड़ करोड़ ब्रह्मांड को भी सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको पता चले हम लोग भगवान का मित्र परिकर हम लोग सर्वज्ञ है फिर कृष्ण का लीला ही नहीं होगा। इसलिए ये जोग माया कृष्ण को और उनके भक्तों को ये दोनों को मोहित करके भगवान का जो माधुर्य लीला है मधुर लीला को यही जोग माया ही सब कुछ कराती है और यही जोग माया ही जीव को भगवान के पास साथ में जोड़ करके जीव को भगवान का चरण में पहुंचा देती है। इसलिए जब तक ये जोग माया की कृपा नहीं होगी तब तक जीव कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए आज यहाँ पर बता रहे थे सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का यहाँ भजन कुटीर है, उनका बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है, एक दो शिक्षा में बता देता हूँ। इनका पहला शिक्षा है कौरे जो लड़ाई लो नाम कोई नाम लो आर जब तक खड़ा नाम पूरे रखे जाओ। इनका शिक्षा है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने जो नाम की है उनको परम्परा में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को देकर के जिस नाम को उन्होंने करवाया तब वह नाम हमें करनी चाहिए। आज जब तक खड़ा नाम तब बाद में कुछ ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे संप्रदाय आए जो अपना मनमानी से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद ये भी कोई संप्रदाय निकाल लिया। कोई बोलते हैं हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद और इसका नाम है भजन निताई गौर लाभो श्याम हरे कृष्ण हरे राम। कभी इस नाम को परवर्ती समय पर कोई बोलते हमारे गुरु जी को स्वप्न समाधि में मिला है इसलिए हम ये नाम करते हैं। लेकिन जगन्नाथ दास महाराज महाराज कट नहीं क्या स्वप्न समाज में कल तेरे गुरु जी को ये नाम मिला दूसरे गुरु दूसरे निकाल दिए तीसरे गुरु जी तीसरे निकाल दिए फिर सारा दिन अपने मनमानी नाम करते रहे कट नहीं। फिर मैंने चैतन्य महाराज रघु जी के नाम को ग्रहण किया हमको परंपरा में हरिदास ठाकुर के नाम को ग्रहण किया रुको गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्यामानंद नरोत्तम दास ठाकुर विश्वनाथ पटेलधारी पढ़ते विद्याभूषण जब इन लोगों ने जो नाम ग्रहण किया है उसी नाम को ही हमें करनी चाहिए। अपना मनमानी ढंग से अलग अलग नाम को सृष्टि करके नाम करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किसी किसी लोगों का मत है कहते किसी चैतन्य महाप्रभु ने कहा यहाँ जब तक किया सब चरिया निर्बंध ये महाप्रभु का आदेश है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहते प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र यहाँ जब तक किया तब करिया निर्बंध ये महाप्रभु यहाँ पर जो सबसे प्रयोग किया यहाँ जब तक किया सब इसलिए कुछ कुछ लोगों ने बाद में किया क्या बोले कहते चैतन्य महाप्रभु ने कहा यहाँ जब तक किया सब महाप्रभु ने कहा इसको जब करने के लिए लेकिन ये गौड़ी मठ तो इसलिए जोर जोर से ये हरे कृष्ण महामंत्र को हम लोग पूरा महामंत्र को जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते हैं। कहते महाप्रभु तो बोला ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र को जोर जोर से करने के लिए लेकिन पता नहीं ये सब गौड़ी मठ उल्टा सीधा करते हैं। फिर भक्ति से टर्न करो तो गोस्वामी प्रभुपाद तो उल्टा सीधा और फिर जगन्नाथ दास भगवान मार्ग उल्टा सीधा करते कहते नहीं फिर जगन्नाथ दास भगवान मार्ग ने कहा कहते नहीं ये हरे कृष्ण महामंत्र को हम मरणीय जपनीय और कीर्तनीय ये नाम तो तीन तरह से कर सकते हैं। जैसे श्री हरिदास ठाकुर कहते तीन लाख हरिनाम करते थे तो तीन लाख हरिनाम में एक लाख हरिनाम तो मरण करके मन मन में और एक लाख हरिनाम करते थे जो केवल कान तक सुनाई पड़े लेकिन और एक लाख हरिनाम करते थे वो जोर जोर से करते थे। जब हरिदास ठाकुर एक समय जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे तो उनको किसी मुसलमान ने पूछा कहते हरिदास ये बताओ भजन हमने सुना मन मन में करनी चाहिए लेकिन तुमने ये हरे कृष्ण महामंत्र को क्या जोर जोर से हरे कृष्णा को बोले तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से करते चलो चलो करते जोर जोर से मन मन भजन करता है तो अगर तुम उत्तर दिले तुम्हारे काम एक प्रश्न कर प्रश्न उत्तर था बोले बोलो एक जन लोग संसार से काट कर इनकम करे पर नीचे खाए और एक जन लोग काट कर टका पैसा पूरा परिवार के खाए बोले तो मतलब मतलब क्यों बढ़ो बोलते साधारण कथा जो पैसा है पूरा परिवार करके खावा तुम भी बढ़ो बोले सोने गांव भावे जरा मन मन हरिनाम करे केवल सारा निचले आत्मकल्याण चिंता करे किंतु जरा उच्च स्तर हरिनाम करे जैसे पशु पक्षी कीट पतंग सारा बोली तो ना पाए सुन ले सारा सब करे जखन कभी जोर जोर हरिनाम करे तादरे कामे जखन भगवान नाम जावे तुम्हारे कल्याण हुए एवं सारो कल्याण आवे सबाए कल्याण होवे तखन तुम बोल ले देखो तुम मन करबे ना हमें निजे मन 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 थेके बोलती तखन तुम एक शास्त्र एक श्लोक तुम उदाहरण दिले बोले शास्त्र एक श्लोक बोले श्लोक तुम बोलो बोले जप तो हरिनाम अनुष्ठानी सत्य गुणा जी को बोले मन मन जरा हरिनाम करे तारा जो फल पावे यदि कहीं जोर जोर हरिनाम करे बोले तो एक सौ गुण बेसी फल पावे जो मन मन में हरिनाम करते हैं उन्हें कोई क्यों फल मिलेगा अगर कोई जोर जोर से हरिनाम करेगा तो सौ गुण ज्यादा फल मिलेगा ये शास्त्र का श्लोक है। चोर जोर जोर में अंदर निकाले ऋषभ स्वामी तुम्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु अष्टगर मत तुम्हें बोलते हरे कृष्ण इतने उच्चाई सुंत नाम गणना ग्रंथ सूत्र उज्जवल करो ऋषभ स्वामी महाप्रभु का अष्टक में लिखते हैं और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण इतनी उच्चाई कहते हुए ये हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च उच्च स्वर में महाप्रभु स्वयं करते थे हम हरदान सगुण करते थे। इसलिए जितने सारे शास्त्रों में देखो ये हरे कृष्ण और भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्मर्तव्य कृतित्व स्मर्तव्य इच्छता भयम वो कहते हैं भगवान का नाम श्रवण कीर्तन स्मरण करनी चाहिए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु शिक्षास्तक में कहते हैं परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तन और संकीर्तन नाम देते हैं और श्रीमद भागवत का जो अंतिम श्लोक है एक नाम संकीर्तनम सर्वपाप प्रणाशनम प्राण सुख समनम सब नमामि हरिपरम ये भागवत का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तन यहाँ पर भी नाम संकीर्तन करने के लिए बताया और भागवत का जो पहला श्लोक है पहला श्लोक में बताया एक निषिद्ध मानानाम इच्छताम अकुत भयम यदि नाम निपनिर्मितम हरे नामानुकीर्तनम यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी जब परिचित महाराज को उत्तर दे रहे हैं फिर केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा। इसलिए श्रीमद भागवत में जहाँ पर श्री नैनी और नवजोगेंद्र संवाद में वहाँ पर जब नैनी महाराज नवजोगेंद्र को प्रश्न करते हैं कलयुग में आराधना कौन है कैसे उनको आराधना किया जाएगा उसको उत्तर में नवजोगेंद्र कहते हैं तथा कृष्ण वर्णम पिशाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम तथ्य संकीर्तन प्राय जजंत ही तुम्हें भाषा कहते कलयुग में जो सुमेद है उसे उत्तम संपन्न वो क्या करेंगे कहते कलयुग में संकीर्ण हरिनाम रूपी संकीर्तन के द्वारा कभी किसको उपासना करेंगे कभी भगवान को उपासना करेंगे कभी संकीर्तन को यज्ञ बताए तो यहाँ पर विश्वनाथ चरण ठाकुर ने कहा ये संकीर्तन यज्ञ कैसे तो वो उदाहरण देते हैं बोले संकीर्तन यज्ञ की करी बोलो बोले काम बोले कुंड जीवा हो जो तामस धूम प्रदान करा है और जो हरे कृष्ण महामंत्र वो मंत्र और हृदय में भी जो भाव प्रकट है कभी यही अग्नि है। इसलिए जब उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करेंगे जब ये संकीर्तन काम में जाएगा तब इसको जरा यही कलयुग में प्रज्ञा है यही हरिनाम रूपी संकीर्तन के द्वारा वो परम पुरुष भगवान कृष्ण को जो स्नेह संपूर्ण व्यक्ति उनको आराधना करेंगे इसलिए भागवत का श्लोक है। इसलिए हम लोगों को उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करनी चाहिए ये महापुरुष का इसे बहुत बहुत शिक्षा बहुत समय हो गया मैं तो और कुछ बोलना चाहता था इसलिए अभी समय नहीं सब दूसरे जगह पर सुनेंगे। इसलिए ये महापुरुष के चरण में हम लोग बहुत बहुत ऋणी है इन्होंने हम लोगों को चैतन्य महापुरुष का जो जन्म स्थान को यही महापुरुष नहीं हाँ उन्होंने निर्दिष्ट करके बताए यही चैतन्य महापुरुष का जन्म भूमि है वहाँ पर भित्ति खनन चले अध्यक्ष के विष्णु वहीं पर प्रकट हुए इसलिए मायापुर कहते इधर है कहते उधर नहीं इधर है लेकिन यही महापुरुष ने ही हमने स्थापन किया कहते नहीं महापुरुष का जन्म स्थान मायापुर में ही है उन्होंने बहुत कुछ प्रमाणित दे करके दिखाया। इसलिए महागुरु के चरण में हम चिर कृतज्ञ और चिर ऋणी है और हम लोग जो माया हरि वैष्णव के चरण में आए उनके चरण में प्रार्थना करें इनकी कृपा के द्वारा ही हम लोग भगवत भक्ति में अग्रत रह सकते हैं वो लोग हम लोग पर भी कृपा करे संख्या कल कृपा सिंधु गौरव
Hare Krishna. Congrats, we're here.
Okay, I can't hear you so good, but we're getting booked near Doi Gat now. Should I call you when we get there?
Yes, yes.
Okay.
Howdy, boy.
Howdy,
congrats. So everybody, log back in about 10-15 minutes. Keep watching.
Howdy, boy. To make any further calls,